हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या है तुम में ऐसा जो लोग इतना ज्यादा चूर रहते हैं तुम्हारे नशे में? और वो तो कुछ ज्यादा ही, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा अपना दिमाग भी खराब हो गया है। अपने हाथ में पकड़ी हुई उस विस्की की बोतल से बात करती हुई सुनैना बोली, वैसे पीने वाले लोग कहते हैं कि शराब हर दर्द की दवा है, तो फिर अभी मेरी प्रॉब्लम्स भी दूर करो थोड़ी। अपने मन में ये सब सोचते हुए सुनैना भी उस विस्की की बोतल की तरफ देखने लगी। फिर उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने उस बोतल का ढक्कन खोला, अपने मुंह से लगाया और शराब पीने लगी। पहले तो उसे शराब बहुत कड़वी लगी और अजीब सा स्वाद भी आया, उसने उसे मुंह से हटा दिया। आह, कितना गंदा टेस्ट है, लेकिन लोग तो इस तरह से पीते हैं जैसे बहुत टेस्टी ड्रिंक हो। लेकिन कोई बात नहीं सुनैना, दवा तो हमेशा ही कड़वी होती है। लेकिन फिर ये सब सोचते हुए उसने दोबारा उसी तरह सीधी बोतल से शराब पीनी शुरू कर दी। उसने आधी बोतल एक सांस में खत्म कर दी और बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सुनैना ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार ड्रिंक किया था और वो भी एक साथ आधी बोतल। ड्रिंक करने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। उसे कमरे की दीवारें, झूमर, बल्ब और जितना भी सामान कमरे में था सब तेजी से अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। चक्कर बहुत तेज आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आधे बैठे बैठे ही बेड पर पैर लटकाकर लेट गई। दूसरी तरफ आदित्य को जो कॉल आया वो ऑफिस से था। नताशा ने वहाँ काफी हंगामा मचा रखा था, क्योंकि आदित्य पिछले कुछ दिनों से ऑफिस नहीं गया था। उसे लगा था कि शायद उसके उस दिन प्रपोज करने की वजह से आदित्य उसे इग्नोर कर रहा है। ये सोचकर नताशा बहुत परेशान हो गई थी और वो कैसे भी करके आदित्य को वापस ऑफिस बुलाना चाहती थी। उसके पास आदित्य के घर का पता नहीं था और पूरे ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं था कि आदित्य आखिर रहता कहाँ है। नताशा ने अपनी तरफ से ये पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं चला। तब उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, क्योंकि आदित्य को लेकर वो काफी पागल थी और आदित्य के उस तरह के रिएक्शन के बाद से तो वो उसे पाने को लेकर और भी ज्यादा जिद में आ गई थी। क्या हुआ रवि, हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्या मेरे बिना ऑफिस दो दिन भी? तेजी से अपने ऑफिस के अंदर आते हुए आदित्य ने रवि से कहा। रवि ने उसे ऑफिस के अंदर जाने के बजाय लिफ्ट की तरफ चलने को कहा। बात वो नहीं है सर, एक्चुअली नताशा। अब क्या किया उस लड़की ने? नताशा का नाम सुनते ही आदित्य ने एकदम इरिटेट होने वाला एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए रवि से पूछा। अब क्या किया मतलब सर, इससे पहले भी कुछ और ऐसा किया था क्या उसने? आदित्य की बात सुनकर रवि ने भी उससे वही सवाल किया। फॉरगेट दैट, तुम ये बताओ अभी क्या किया उसने? रवि का सवाल टालते हुए आदित्य ने उससे दूसरा सवाल किया। तब तक वे दोनों लिफ्ट में आ चुके थे। रवि ने टेरेस वाले फ्लोर के लिफ्ट का बटन दबाया। आदित्य उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और कुछ समझने की कोशिश करने लगा। तभी रवि बोला, सर वो लड़की नताशा वो बिल्कुल पागल हो गई है। दिन से आपके बारे में पूछ पूछ कर मेरा सर खा गई और मुझे सच में कुछ पता नहीं था। आपने मुझे बताया ही नहीं तो मैं उसे क्या बताता, लेकिन उसे लगा कि हम जानबूझकर उसके बारे में नहीं बता रहे और शायद ऐसा आपने हमें करने को कहा है, तो उसने आज ये। ओ गॉड, वो लड़की पागल है, पूरी की पूरी साइको। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने उसे ज्वाइनिंग दी थी इस ऑफिस में। रवि की ये सारी बातें सुनकर आदित्य पिछली कई बातें सोचते हुए बोला, अरे सर वो आपके क्लाइंट थे ना मिस्टर खन्ना, उनकी सिफारिश पर ही तो उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, नहीं तो कहाँ उस जैसी लड़की को जॉब मिलती यहाँ पर। एक काम तो ढंग से आता नहीं, बस जब देखो आपके आगे पीछे डोलती रहती है 10 किलो का मेकअप करके। आदित्य की बात सुनकर रवि भी काफी जलकर ये बात बोला, क्योंकि नताशा अपनी हरकतों की वजह से ऑफिस में किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हें भी ये पता था कि मेरे पीछे है वो लड़की कब से? तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं किया, उसका ट्रांसफर ही करवा देते यहाँ से? रवि की बात सुनकर आदित्य तुरंत बोला। रवि बगले झांकने लगा और थोड़ा सोचते हुए बोला, वो सर मुझे लगा कि आपको, मतलब आप तो बॉस हैं यहाँ के, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला उस अदना से लड़की से, और इसीलिए मैंने। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बताओ आज क्या किया उसने? रवि की बात काटते हुए आदित्य ने उससे फिर से पूछा। रवि कुछ बोल पाता इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वे दोनों टेरिस पर आ गए, जहाँ ऑफिस का काफी सारा स्टाफ पहले से ही इकट्ठा था। रवि के कॉल करने के बाद आदित्य सुनैना को घर पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकला और वहाँ पहुँचकर रवि से पूछा कि क्या ऐसा हो गया जो उसे इतनी अर्जेंट ऑफिस ऑफिस आने को बोला उसने कॉल करके। रवि ने उसे बताया कि नताशा ने हंगामा कर रखा है। रवि और आदित्य नताशा के बारे में बात करते हुए लिफ्ट से ऑफिस बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वे दोनों एक साथ ही बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गए। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बताओ आज क्या किया उसने, रवि की बात काटते हुए आदित्य ने उससे फिर से पूछा। रवि कुछ बोल पाता इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और वे दोनों टेरेस पर आ गए जहाँ ऑफिस का काफी सारा स्टाफ पहले से ही इकट्ठा था। आप खुद ही देख लीजिए सर, आदित्य का सवाल सुनकर एक ठंडी सांस भरते हुए रवि बोला। वे दोनों साथ ही लिफ्ट से निकलकर ऊपर टेरेस पर आ गए। वहाँ अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा देखकर आदित्य की भौहें तन गईं। उन सब के बीच से निकलकर आगे आते हुए वो बोला, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, और तुम सब अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो, इस बात की सैलरी देता हूँ क्या मैं तुम। आदित्य बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने छत के एकदम किनारे की ऊंची दीवार पर खड़ी नताशा पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए उन सब की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी और बोल रही थी, कहा ना मैंने तुम सबको, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरने वाली जब तक तुम सब आदित्य सर को यहाँ पर नहीं बुलाओगे। मैं नहीं आऊँगी और अगर वो नहीं आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। नताशा का चेहरा दूसरी तरफ था और वो अभी आदित्य को वहाँ पर आते हुए नहीं देख पा रही थी। आदित्य ने भी ये बात इतनी तेज आवाज में नहीं बोली थी कि नताशा के कानों में उसकी आवाज पड़ती। उसे वो सब कुछ देख कर सारा माजरा समझ में आ गया और साथ ही ये भी कि क्यों रवि उससे बोल रहा था कि नताशा ने यहाँ ऑफिस में हंगामा मचा रखा है। ये सब देखकर आदित्य ने एकदम तिरिटेट और परेशान सा चेहरा बनाकर रवि को पुलिस को कॉल करने का इशारा किया और खुद सबकी तरफ चुप रहने का इशारा करते हुए चुपके से नताशा की तरफ बढ़ा और एकदम रूखी आवाज में बोला, और कितने दिन तक यही ड्रामा कंटिन्यू करने का इरादा है तुम्हारा, कूदने वाली थी ना यहाँ से, तो कूदो चुपचाप और काम खत्म करो, छुट्टी दो सबको। क्रमशः बेचारा आदित्य तो आज गया काम से, उधर घर पर बीवी कांड करके बैठी है और यहाँ पर उसकी ये साइको लवर, वो तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। अब आदित्य उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं, उसने साफ साफ ये बात नताशा को सामने से बोल दी है, लेकिन फिर भी ये लड़की पता नहीं क्या करवा कर रहेगी। उससे तो अच्छा विराज था, आखिर सुनैना के मना करने के बाद से चुपचाप तो बैठा है अपने घर में। वैसे क्या लगता है आप सबको, क्या करेगा अब आदित्य, और जब घर पहुँचेगा तो सुनैना को उस हालत में देखकर कैसा लगेगा उसे।